ओम शांति। ये जनवरी मास विशेष पावक की स्मृतियों का मास होता है और हम सभी का लक्ष्य होता है कि हम बाबा समान बने, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। तो बाबा ने जैसा पुरुषार्थ किया उसको ही हमें फॉलो करना है, फॉलो फादर। और हम सब ने सुना है बाबा की अंतिम क्लास के शब्द थे जो बच्चों के लिए प्रेरणा थी, वो शब्द थे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनना है। तो बाबा समान ही हमारे संकल्प, बोल और कर्म हो, ये बाबा ने इन तीन शब्दों में सारा सार कह दिया। तो मनसा में निराकारी स्थिति हो, कर्मणा में निरहंकारी हो और वाचा में, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में निर्विकारी हो। जब हम निराकारी स्थिति कहते हैं तो उसका भाव है अशरीरी आत्मिक अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, जो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं और संगम युग पर ही हम इस स्थिति का अनुभव करते हैं। जैसे ही ज्ञान लेते हैं पहला पहला पाठ ही पढ़ते हैं मैं आत्मा हूं। तो आत्मा समझा, आत्मा को माना या जाना, लेकिन जीवन में सदा आत्मिक स्मृति रहे, व्यवहार ही आत्मिक भाव से हो, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो इतना सहज नहीं है, इसलिए हर दिन की मुरली में बाबा हमें देही अभिमानी बनने की बात जरूर कहते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली में था कि आत्मिक स्मृति का तिलक बाबा ने हमें लगाया, लेकिन वो तिलक चमकाने में सबकी परसेंटेज है। तिलक सभी को लगा है लेकिन वो कितनी परसेंटेज में चमक रहा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे दीपक की लौ जलती है तो द्रुत बराबर उसमें डल रहा है तो वो लौ चलती रहेगी, और द्रुत कम हुआ तो उस लौ की चमक भी कम पड़ने लगती है। तो ऐसे ही अटेंशन रूपी द्रुत जितना हम डालते हैं उतना हमारी आत्मिक स्मृति की परसेंटेज ज्यादा होती है। और अटेंशन हम सब चेक कर सकते हैं हमारा कितना होता है। सुबह हम योग करते हैं, क्लास करते हैं तो थोड़ा अटेंशन रहता है, लेकिन सारे दिन जैसे ही कार्य व्यवहार में गए तो अटेंशन में फर्क पड़ने लगता है। कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, देह अभिमान में भी आ जाते हैं। बाबा ही भूला हुआ होता है तो आत्मिक स्मृति तो नहीं के बराबर हो जाती है। और फिर शाम को जब थोड़ा योग में बैठते हैं या बाबा को याद करते हैं फिर थोड़ा अटेंशन जाता है। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए और निराकारी स्थिति का अनुभव करने के लिए इतना अटेंशन काफी नहीं है, हमें अपने अटेंशन को बढ़ाने की जरूरत है। और यही कारण है कि जब बाबा ने एक बार कहा था कि हर घंटे में कम से कम 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है, तो हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल बजना शुरू हुआ। मधुबन में हर घंटे में 1 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल जरूर बजता है, ताकि उस समय हम बिल्कुल अपनी आत्मिक अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। वैसे रेगुलर में दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल जरूर होता है, पर क्या हम सचमुच उस ट्रैफिक कंट्रोल के समय पर अव्यक्त स्थिति में चले जाते हैं या मन संकल्पों विकल्पों में ही रह जाता है? ये भी चेकिंग करने की जरूरत है। तो पहले तो हमें ये अंडरलाइन करना होगा कि क्यों बाबा हमें बार बार वो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करने के लिए कहते हैं, क्या उससे हमें सचमुच लाभ होते हैं जो हमें इतना महत्व से उसका अभ्यास करना है। तो अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति बहुत न्यारी स्थिति है। वो हमें देह और देह के संबंधों से एकदम न्यारा कर देती है। तो यदि हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और दूसरों को भी आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, आप जहां भी कार्य व्यवहार में जाते हैं, हर एक अपने अपने स्थान पर कार्य करते हैं, संबंधों में आते हैं, और अगर आपकी दृष्टि आत्मिक है तो दूसरे उस रूहानियत को अनुभव करते हैं, वो महसूस करते हैं कि इनकी दृष्टि वृत्ति हमसे न्यारी है, जिस तरह से हम देखते हैं ये उस तरह से नहीं देखते हैं। वो योगी की एक दृष्टि और शीतल दृष्टि, सुख देने वाली दृष्टि, शुभ भावना वाली दृष्टि वो उनको अनुभव होती है। तो आपकी वो दृष्टि वृत्ति स्वतः सेवा करती है, जिसे बाबा कहता है अपने चेहरे और चलन से सेवा करो। तो चेहरे में रूहानियत कब होती है? जब हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है। अगर आत्मिक दृष्टि वृत्ति नहीं है, भले ही हम रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज अपना पुरुषार्थ पूरा नियम से कर रहे हैं, लेकिन वो रूहानियत नहीं होगी तो लोग वो अंतर अनुभव नहीं करेंगे। और आपके द्वारा जो नेचुरल सेवा होनी चाहिए, अगर हम परिवार में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, तो ज्ञान सुना करके हम ज्यादा सेवा नहीं कर सकते। हम अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन से ज्यादा सेवा कर सकते हैं। तो वृत्ति वाइब्रेशन का प्रभाव कब होगा? जब हमारी वो अशरीरी स्थिति होगी, बीच बीच में उसको अटेंशन देकर के हम अभ्यास करेंगे। और जैसे ही आत्मिक स्थिति में जाते हैं, आत्मा के गुण भी अनुभव में आते हैं, क्योंकि आत्मा के गुण कौन से हैं? शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। तो उसकी स्मृति भी स्वतः आती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं। बाबा ने हमें केवल मैं आत्मा हूं ये स्मृति नहीं दिलाई है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, कौन से गुणों वाली हूं, वो भी स्मृति दिलाई है। तो स्मृति से स्थिति बनती है, स्मृति नहीं है तो स्थिति भी नहीं बनेगी। तो अगर वो स्मृति है कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, तो वो स्थिति का अनुभव औरों को भी होगा, स्वयं को भी होगा। तो औरों की स्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का वातावरण तो तमो प्रधान है। आज कलयुग का समय है, हम सभी जानते हैं, तो दुनिया वाले तो कलयुग में है ना। हम भले ही संगम युग में हैं, लेकिन सब आत्माएं कौन से वातावरण में हैं? कलयुगी वातावरण में हैं। तो अगर मेरी वो स्थिति नहीं है तो उनके वाइब्रेशन का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा? पड़ जाएगा, और पड़ जाता है अगर हम विस्मृत हो जाते हैं। ये स्मृति हमें तमोगुणी नेगेटिव वाइब्रेशन से भी बचाने वाली है। मेरी शांति की स्थिति का अनुभव मुझे सदा रहे, मेरी पवित्रता का अनुभव, आत्मिक स्थिति हमें पवित्रता की स्थिति का भी अनुभव कराती है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति ही शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। आत्मा हम भाई भाई हैं, वो स्त्री पुरुष की दृष्टि से भी ऊपर की दृष्टि है। तो वो शुद्धता, वो पवित्रता दूसरों पर प्रभाव डालती है, दूसरों की अपवित्रता का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आता है। तो ये लाभ, हाँ ये कहेंगे फायदा हमें आत्मिक दृष्टि वृत्ति के अटेंशन रखने से होता है कि हम हर परिस्थिति में विजय का अनुभव करते हैं, परिस्थिति को स्वस्थिति से हम विजय पा लेते हैं, कि स्वस्थिति में हम अनुभव स्थित हो पाते हैं। और जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो अशरीरी स्थिति हमें बाबा से योग लगाने में भी बहुत मदद करती है। हम सहज ही योग में एकाग्र हो जाते हैं क्योंकि बाबा भी निराकार है, शिव बाबा समान स्थिति है निराकार स्थिति, शिव बाबा निराकार है ना। तो जब योग भी सिखाते हैं तो ये समझाते हैं कि योग करते समय हमें आत्मिक स्मृति में योग करना है क्योंकि तब हमारी फ्रिक्वेंसी बाबा की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, तब वो करंट बाबा का आत्मा में फ्लो होता है। अगर बाबा के समान स्थिति नहीं होगी, अगर मैं देह भान में हूं और शिव बाबा निराकार है तो कनेक्शन होगा, जब समान होंगे तब कनेक्शन होगा। तो बाबा कहता है ज्वालामुखी योग करो। तो ज्वालामुखी योग की स्थिति कब होती है? जब हम निराकारी स्थिति में अशरीरी स्थिति में परम धाम में बाबा को याद करते हैं और इस बिंदु रूप स्थिति में सर्व गुणों का सार समाया है, सर्व शक्तियों का सार समाया है, क्योंकि सर्व गुण और सर्व शक्तियां ये आत्मा की बीज रूप स्थिति है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ है लेकिन हम देख नहीं सकते उसको, आप बीज को तोड़ भी देंगे तो भी वृक्ष दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें है, समाया हुआ है। ऐसे ही आत्मिक स्थिति में सर्व शक्तियां स्वतः ही समाई हुई हैं। तो उस स्थिति में जाते ही वो इतनी पावरफुल स्थिति है कि हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म को विनाश करती है। योग अग्नि का रूप लेता है, हम लगन में मगन स्थिति का सहज अनुभव करते हैं। आप अमृत वेले योग करते हैं तो वो अमृत वेले 45 मिनट एक घंटा कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, अगर उस स्थिति में मन स्थित हो गया। और बहुत सहज है अमृत वेले अशरीरी स्थिति का अनुभव करना। उस समय हमारा मन प्रकृति दोनों ही हमें सहयोग देते हैं क्योंकि मन भी सात्विक स्थिति में होता है, शांत होता है, लेकिन सिर्फ माया विघ्न डालती है। किस रूप में? निद्रा योग में ले आती है। आजकल वैसे भी सर्दी के दिन है तो रजाई से निकलना ही मुश्किल होता है, निकल आए तो फिर वो पावरफुल योग। आज भी बाबा की मुरली में था कि बाबा से सुबह सुबह उठते ही क्या करो, हाँ गुड मॉर्निंग करो और लव से बाप को याद करो। हाँ, जितना स्नेह से बाबा को याद करेंगे उतना करंट मिलेगी, था ना आज बाबा की मुरली में। तो अमृत वेले जो अनुभव हो सकता है वो सारे दिन में नहीं हो सकता, पर माया भी उसी समय चांस लेती है क्योंकि माया को पता है कि ये इनका पावरफुल योग करने का टाइम है, ये भगवान से वरदान लेने का इनका समय है, तो अगर मैं वंचित कर सकती हूँ तो इस समय ही कर सकती हूँ। तो वो हमें फिर अपना पुरुषार्थ करना है, कैसे हम माया के उस विघ्न को दूर करें। और बाबा से वो पावरफुल योग जो बीज रूप स्थिति का योग है वो सबसे अच्छा हम अमृत वेले के समय अनुभव कर सकते हैं। परम धाम में मैं बिल्कुल बाबा के दिव्य ज्योति स्वरूप जो परम ज्योति रूप है उसके सामने हूँ। बाबा से वो सर्व शक्तियों का वरदान, सर्व गुणों का वरदान मैं आत्मा स्वयं भी ले रही हूँ और विश्व की सर्व आत्माओं को भी मैं वो वाइब्रेशन उस समय बहुत सहज दे सकती हूँ क्योंकि उस समय कोई तमोगुणी वाइब्रेशन का विघ्न नहीं होता है। सहज आप जिस आत्मा को जो वाइब्रेशन देना चाहें दे सकते हैं। हर एक आत्मा को जिसको आपको सेवा करनी है उसे आप इमर्ज करके वो सेवा कर सकते हैं। तो अशरीरी स्थिति न सिर्फ इतना, लेकिन बाबा कहता है कर्म भोग के समय भी हमें मदद करने वाली होती है। शरीर के कर्म भोग हमारे चलते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे को सारे हिसाब किताब यहां ही चित्तू करने हैं। तो उस कर्म भोग को हम कर्म योग से सूली से कांटा बना लें। जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो कितना भी दर्द होता है वो इंजेक्शन से ठीक हो जाता है, तो वो है स्थूल इंजेक्शन। लेकिन अशरीरी स्थिति रूहानी इंजेक्शन का काम करती है। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है और आप अपने आप को देह से नियारा कर लेते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं, यानी बीमारी कॉन्शियस से, बॉडी कॉन्शियस से अगर आप सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाते हैं, तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि कितना बड़े से बड़ा दर्द भी हल्का हो जाता है, दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे भाई बहनों का ये अनुभव होता है, और अगर नहीं किया है तो आप अनुभव करके देख सकते हैं उसको, कि कैसे अशरीरी स्थिति हमारे हिसाब किताब को चुकतू करने में बहुत मदद करती है। और हमेशा कर्म भोग को चुकतू करने की ये विधि है, दवा और दुआ। बाबा कहता है डॉक्टर जो दवाई देता है वो जरूर लो, लेकिन उसके साथ साथ ये बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं अगर हम इस स्थिति से योग करते हैं और उस बीमारी में हम मदद लेते हैं। तो निराकारी स्थिति बहुत पावरफुल स्थिति है, लेकिन अटेंशन देने की जरूरत है उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए। और इसीलिए हम सुनते हैं ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने कैसे शुरू शुरू में सिर्फ एक इस पाठ का ही अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, कैसे बाबा ने अभ्यास किया। जैसे ही ये लेसन मिला, उस समय उनके पास सिर्फ एक ही लेसन था, बाकी ज्ञान धीरे 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 बाबा ने प्रत्यक्ष किया। आज तो हमको सारा ज्ञान एक साथ मिल जाता है, चाहे हम 7 दिन के स्टूडेंट हैं तो भी हमें पूरा ज्ञान पता होता है कि बाबा का पूरा ज्ञान क्या है। तो शायद आत्मा का पाठ सुन के हम भूल जाते हैं, दूसरे विस्तार में ज्यादा चले जाते हैं, सार को भूलने लगते हैं, लेकिन उस सार में ही सब कुछ समाया हुआ है। दादियों से भी हम सुनते हैं, दादियां भी सुनाती हैं कि हमने कितना ज्यादा अटेंशन दे करके आत्मा का और आत्मा के गुणों के अनुभव करने का पाठ पक्का किया, कि मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है और मुझे उसमें स्थित कैसे रहना है। तो हमें भी उस पर वो पूरा अटेंशन देने की जरूरत है, तब उस अव्यक्त स्थिति का हम अनुभव कर सकेंगे जो बाबा हमसे चाहते हैं। व्यक्त भाव से न्यारा होकर के अव्यक्त भाव में रहना, यानी जो दिखाई नहीं देता है। अव्यक्त किसको कहते हैं? व्यक्त ये शरीर है, साकार रूप है, और अव्यक्त या तो आकारी रूप जो फरिश्ता रूप है, और या फिर निराकारी रूप जो इस देह से न्यारा स्वरूप है आत्मा का, उसके अनुभव में अधिक समय रहना। ज्यादा से ज्यादा समय मेरा मन व्यक्त भाव से न्यारा होकर अव्यक्त भाव में रहे। फिर बाबा ने हमें निर्विकारी स्थिति का इशारा दिया, तो सारा पुरुषार्थ ही निर्विकारी बनने का है, संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, मतलब संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सतयुग की महिमा क्या है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो संपूर्ण निर्विकारी देवताएं, वो स्थिति हमें अभी अनुभव करनी है, वही संस्कार आत्मा सतयुग में लेकर जाने वाली। विकारों पर विजय अभी प्राप्त करनी है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हम जानते हैं ये 5 विकार हैं। तो ब्राह्मण बनते हैं तो 5 विकार मोटे रूप में हम जीत लेते हैं। मोटे रूप में जीतना माना जो उनका प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है उस पर विजय पाना मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन उनके जो सूक्ष्म रूप हैं, विकारों के जो अंश वंश हैं, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लोहे की जंजीरें खोलना आसान होता है, बाबा कहता है, लेकिन सोने की जंजीर वो अपने आप में ही आकर्षण करने वाली होती है, सोने की जंजीर नहीं कहेंगे, सोने की चेन। हाँ, तो उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे काम विकार, बाबा कहते हैं हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं तो मोटे रूप में पवित्रता को धारण करते हैं, ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। लेकिन सूक्ष्म रूप किस रूप में आता है? किसी की विशेषता से, किसी भी बहुत उनकी जो भी योग्यताएं हैं, या वो हमें बहुत स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, किसी भी रूप में लगाव हो जाता है, या किसी भी आत्मा की तरफ विशेष झुकाव है, या कामनाएं, बाबा उसको भी काम विकार का अंश कहते हैं, बहुत कामनाएं होना, इस रूप में काम विकार आता है और इतना सहज हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो यहां बाबा हमें कहता है हमेशा बीच में बाबा को रखो। जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं या दुनिया में भी कोई जो आत्माएं होती हैं, उनमें विशेष गुण होते हैं, योग्यताएं होती हैं, तो किसकी दी हुई है, वो देन किसकी है? दाता की देन है, देने वाला तो बाबा है। तो बाबा को याद करो। अगर किसी के गुण विशेषता स्नेह हमें प्रभावित करते हैं तो उस समय भले ही हम उनकी विशेषताओं को अपने में धारण करें लेकिन प्रभावित नहीं होना है। अच्छा, इसमें ये गुण बहुत अच्छा है तो ये गुण मुझ में भी होना चाहिए, इसका मतलब हम ये चाहते हैं, तो उस गुण को अपने में लाने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन वो मुझे योग में डिस्टर्ब करे, मैं बाबा को याद करती हूँ और मुझे वो लगाव वाली आत्मा खींचती है, तो फिर हम योग में कभी भी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो बाबा कहता है लीकेज का काम करता है। आपकी शक्ति कहाँ लीक हो रही है? वो आत्मा आपकी सारी शक्ति खींच लेती है, बाबा से आप शक्ति नहीं भर पाते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है कि योग में जब हम बैठते हैं और यदि कोई आत्मा मेरे मन को खींचती है, इसका मतलब वहां मेरे मन का लगाव और झुकाव है, हम किसी ना किसी रूप में उनसे प्रभावित हैं। दूसरा, क्रोध की बात अगर हम करते हैं तो क्रोध मोटे रूप में हम जीत लेते हैं ब्राह्मण बनते ही। हम जोर जोर से बोल के गुस्सा नहीं करेंगे, या हम किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, चीजों को नहीं फेंकेंगे, लेकिन गुस्सा आता है ब्राह्मणों को किस रूप में? किसी ने मेरी बात नहीं मानी, हम चाहते हैं कि मेरी बात माने और नहीं मानी, या फिर झूठ बोला, या फिर आप भी सुना सकते हैं कैसे गुस्सा आता है, या फिर किसी ने मुझे थोड़ा धोखा दे दिया किसी बात में, मेरा अपमान कर दिया, मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया। हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन वो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, यही बातें होती हैं जो गुस्सा दिलाती हैं। तो फिर हम बोलते कुछ नहीं है, उस समय थोड़ा कई बार सहन कर लेते हैं, अगर नहीं कंट्रोल है तो बोल भी जाते हैं, बोलते हैं उसने ऐसा किया ना इसलिए मैंने किया, मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है? तो फिर हम पास हुए, क्या कहेंगे? परिस्थिति आएगी तभी तो पेपर में पास होना है, परिस्थिति के बिना थोड़ी गुस्सा आएगा, बिना कारण के गुस्सा आएगा कभी? बिना कारण के किसको गुस्सा आता है? आप सभी बैठे हैं, बताइए बिना कारण के गुस्सा आता है? कोई तो कारण बनेगा ना जो हम गुस्सा करेंगे, उस कारण बनने में भी मुझे गुस्सा नहीं आया तभी तो हम पास हुए। और बाबा कहता है कई बार वो क्रोध ही बाबा का नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाता है, वो आपका टेस्ट पेपर होता है। लोग आपको जज करते हैं, दुनिया वाले यही तो देखना चाहते हैं कि जिन बातों में हम गुस्सा करते हैं उन्हीं बातों में ये भी करते हैं कि नहीं करते हैं, और उन्हीं बातों में अगर आप भी गुस्सा करते हैं तो वो क्या कहेंगे? आपके घर वाले ही आपको सुना देंगे कि आप आश्रम में जाकर के क्या ज्ञान सुनते हो, क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कहेंगे? तो फिर बाबा की हम निंदा करा लेते हैं कई बार, और अगर हम निंदा कराते हैं, बाबा कहता है तो एक का 100 गुना विकर्म बनता है। अगर एक की पदम गुना हमें प्राप्ति होती है, अगर हम पास होते हैं तो एक की पदम गुना प्राप्ति होती है, और यदि हम फेल होते हैं तो फिर एक का 100 गुना दंड भी विकर्म भी बनता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में हमें गुस्सा नहीं करना है। सूक्ष्म रूप में गुस्सा नाराजगी के रूप में आता है, बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन नाराज हो जाएंगे माना अपने हाव भाव से हम दिखाएंगे कि हमें अच्छा नहीं लगा, या थोड़ा अपने कर्म ऐसे होंगे हमारे जो उनको दुख देने वाले होंगे, मुख से नहीं बोल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं आजकल की भाषा में, उसे मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अपने शारीरिक हाव भाव से हम उसे ज्यादा दिखाते हैं बोलने की बजाय। फिर ईर्ष्या के रूप में भी गुस्सा आ जाता है, दूसरों को हम देख नहीं सकते हैं तो फिर नाराजगी हम दिखाते हैं, या फिर घृणा, दूसरों की कमियों को देख करके थोड़ा नफरत का भाव मन में आ जाता है। तो हमें बाबा ने समझाया है कि किसी की कमियां हमें देखनी ही नहीं है, गुण ग्राहक बनना है। हम सब यहाँ पर अपनी कमियां छोड़ने ही आए हैं, कोई भी संपूर्ण तो नहीं है। सभी ब्राह्मणों में कोई ना कोई विशेषता है तो कोई ना कोई कमी भी है, उन विशेषताओं को हमें बढ़ाना है और कमियों पर ध्यान नहीं देना है। तो ना अपनी कमियों को चेंज करना है और दूसरों की कमियों पर बिल्कुल भी मेरी नजर नहीं जानी चाहिए। तो किसी भी रूप में अगर क्रोध का अंश वंश है तो हम बाबा की जो हमें मुरली में शिक्षाएं मिलती हैं उन शिक्षाओं से चेंज करना। कई बार बाबा हमें कहते हैं कोई आप पर गुस्सा कर रहा है तो आप उस समय शांत रह जाओ, गुस्सा करने वाले पर भी फूल बरसाओ। फूल बरसाने का मतलब ये नहीं कि हम फूल डालने लग जाएं, नहीं तो वो और ही गुस्सा हो जाएगा। फूल बरसाने का मतलब है आप फिर भी उनसे प्यार से बात करो। हाँ, वो गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर भी हम प्यार से बात कर सकते हैं। तो वही तो परिवर्तन की शक्ति है। अगर वो परिवर्तन की शक्ति हमने यूज की तो वो सचमुच आत्मा को आप परिवर्तन कर पाएंगे। आप देखेंगे कि 2-4 बार आपने फिर भी अच्छा व्यवहार किया तो 5वीं बार वो भी अच्छा व्यवहार करना आपसे शुरू कर देंगे। फिर अगर हम लोभ की बात करते हैं तो हम ब्राह्मणों को वो दुनिया वालों जैसा धन का लोभ नहीं रहता, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कि ये विनाशी कमाई है और इस विनाशी कमाई के पीछे अगर हम गए तो अविनाशी कमाई से हम वंचित हो जाएंगे। साथ क्या जाने वाली है? अविनाशी कमाई हमारे साथ जाने वाली है। तो बहुत धन कमाने के पीछे, जैसे दुनिया वाले आज की भागदौड़ की जिंदगी है, भाग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा धन हम कैसे कमा ले, वो ब्राह्मणों की वृत्ति नहीं रहती। और ही हम समझते हैं कि कैसे हम अपना कारोबार समेटें और ज्यादा समय हम बाबा के पुरुषार्थ में दें। करते नहीं करते ऐसा कि अगर हमारे पास इतना धन है कि हमारा जीवन सहज चल सकता है तो हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाते। और बाबा भी कहता है अगर आप इस जमाने के करोड़पति बन गए तो क्या होगा? क्या होगा? सदा के करोड़ से, सदा के पद्मों की कमाई से वंचित हो जाए, माया खींच कर ले जाएगी आपको। उस धन में इतनी पावर है कि वो आपको खींच के ले जा सकता है। लेकिन सूक्ष्म रूप में जो लोभ आता है, मोटे रूप का लोभ तो खत्म हो जाता है, वो संतोष आता है, लेकिन आज की दुनिया के जो सुख सुविधा के साधन हैं, उनका लोभ, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, हर एक का, किसी किसी का होता है इस तरह के ही कपड़े पहनने हैं, या खाना कैसा होना चाहिए तो इस तरह का ही भोजन में ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी मन संतुष्ट होता है। अगर उसमें थोड़ी कमी रह गई तो असंतुष्ट हो जाएंगे। तो खाने की चीजें, पहनने की चीजें, जो दिन भर के हमारे साधन हैं वो हमें अगर खींचते हैं, हमारी वृत्ति को खींचते हैं, या दूसरों से हम तुलना कर लेते हैं अपनी, इसके पास इतना कुछ है मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए, वो एक चीज होगी उससे हम संतुष्ट नहीं, दूसरा भी होना चाहिए। जैसे कई बार मुरली में बाबा कहते हैं 10-10 जोड़ी जूते रख लेते हैं, हाँ 10-10 जोड़ी और भी जो भी हमें जो चाहिए उस तरह की चीजों को हम संग्रह करते हैं, वो भी लोभ वृत्ति है। अगर हम आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता की एक सीमा होती है, अगर आवश्यकता अधिकता में चली जाती है तो वो भी लोभ का अंश वंश है। और बाबा कहता है अंतिम समय में ये आपको धोखा दे सकता है, ये प्रकृति के साधन ही अंत में पेपर लेंगे, प्रकृति के 5 तत्व इस रूप में सामने आएंगे। बाबा कहता है अगर अच्छा भोजन मिल रहा है, 36 प्रकार के भोग मुझे मिल रहे हैं तो भी हम खुश हैं, और अगर सूखी रोटी खाने को मिल रही है तो भी हम खुश हैं, दोनों ही में मैं संतुष्ट हूं तब मुझे लोभ का अंश नहीं है। बहुत अच्छा कपड़ा पहनने को मिल रहा है, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हैं तो भी बहुत अच्छा, और यदि चप्पी वाला कपड़ा पहनने को मिले और कुछ भी सुख सुविधा के साधन ना मिले, हाँ जो आज आपके पास है 24 घंटे मोबाइल हाथ में है और एक दिन मोबाइल आपसे ले लिया जाए, हाँ तो भी आप की स्थिति में अंतर नहीं आता, हो सकता है, हो सकता है, तो अपने आप को चेक करके देखना है। हाँ हाँ चाय पीते हैं दिन में 4 बार आज चाय पीते हैं, और फिर कभी हमको बिल्कुल ही चाय पीने को नहीं मिली तो भी मेरी स्थिति में फर्क नहीं आता है। तो ये अभी से यदि हम अभ्यास करेंगे तो अंतिम समय में ये जो हमारे पेपर होने वाले हैं उसमें हम पास हो सकेंगे। ये अंश वंश है जो मन की स्थिति को हलचल में लाते। तो बाबा कहता है एक रस स्थिति होनी चाहिए, अचल स्थिति होनी चाहिए। अगर हलचल वाली स्थिति हो जाती है किसी भी उसमें तो फिर इसका मतलब अभी तक हम उस पर विजयी नहीं बने हैं। ऐसे ही मोह, अगर हम मोह की बात करते हैं तो मोटे रूप में हम नष्टो मोहा हो जाते हैं। बाबा कहता है देह के साथ साथ देह के संबंध भी, हाँ तो कई बार ऐसा होता है हम ज्ञान में आते हैं, हमारे परिवार वाले उसमें विघन रूप बनते हैं तो हमारा मोह टूट जाता है, हाँ हमें पता चलता है कि सब संबंध स्वार्थ के संबंध हैं, और आज के संबंध कैसे हैं वो संबंध दुखी देने वाले हैं तो उससे मोह टूटने लगता है, लेकिन सूक्ष्म रूप वो मोह आसानी से नहीं जाता है। लोभ और मोह एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोभ होता है जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए, और मोह होता है जो मेरे पास है उसमें मेरी बुद्धि लगी हुई होती है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो व्यक्ति और वस्तु दोनों में मोह हो सकता है। अब मानो कोई वस्तु है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत वैल्यूबल है, उस चीज को भी अगर नुकसान हो जाता है, मानो वो चोरी हो जाती है आपकी, तो क्या होगा, दुखी होंगे नहीं होंगे? जितनी मात्रा में मोह है उतना ही ज्यादा मुझे दुख होगा वो चीज को नुकसान होने में या मेरे पास से चले जाने में। और यदि मुझे उससे मोह नहीं है तो भले चली गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मानो व्यक्ति की बात है, सड़क पे किसी का एक्सीडेंट होता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा पन उसमें मेरा जरा भी नहीं है, वो व्यक्ति मेरा नहीं था इसलिए मुझे उसके मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे ही घर में मेरे ही किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो मुझे फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है, क्यों दुख होता है? हाँ, क्योंकि उसमें मेरापन है। और जितनी मात्रा में मोह होगा उतना ज्यादा आप दुखी होंगे। अगर मोह नहीं होगा तो उतना दुख भी नहीं होगा। तो ये मोह विकार जो है वो इस तरह से जितना दुख होता है उतना मेरे अंदर मोह है उससे हम चेकिंग कर सकते हैं। तो बाबा कहता है जितना भी मेरा मेरा हम समझते हैं, चाहे व्यक्ति हैं या वस्तु हैं, उन सबको तेरा तेरा में बदल दो, सभी विकारों का स्वरूप बदल दो, परिवर्तन कर दो। परिवर्तन करेंगे तो वही विकार जो है वो, बाबा कहता है जैसे पांच फन वाला सांप दिखाते हैं ना, तो वो पांच फन वाला सांप जो है वो विष्णु की शेष शैया बन गई, तो वही विकार जो है वो सेवाधारी बन जाएंगे अगर हमने उसका रूप परिवर्तन कर दिया। तो तेरा कर देना मना, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया, मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है हम ट्रस्टी बन के यूज कर रहे हैं, बाबा की अमानत है और हम बाबा की सेवा के निमित्त हैं। आत्माएं हैं, व्यक्ति हैं, तो हम इनकी सेवा के निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं, और यदि वस्तु है तो भी बाबा की है। ये तन भी है, तन में भी मोह होता है, अपने तन में भी मोह होता है, तो मेरा तन नहीं लेकिन बाबा ने सेवा अर्थ मुझे ये दिया है, इस तन में मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ, परम धाम से आई हूँ और इस तमो प्रधान सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य कर रही हूँ। अपना भाव बदलना है उसके अंदर, तो वो मोह जो हमारा वंश रूप में भी आता है, हम नष्टो मोहा होते जाएंगे। और अंतिम पेपर ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा ना। और अगर हम अहंकार की बात करते हैं तो मोटे रूप में भी हम सबका अहंकार समाप्त हो जाता है, मैं फलाना हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ, धनवान हूँ, हाँ या जो भी हमारे पास कोई कलाएं विशेषताएं होती हैं उसका भी किसी किसी को अहंकार होता है, बुद्धिमान होते हैं उसका भी कोई अहंकार होता है, बड़ी बड़ी पढ़ाई की होती है, जो भी, वो सारे अभिमान हमारे समाप्त हो जाते हैं जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि ये तो मेरा रोल है, ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और संसार में तो ये हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म अभिमान, बाबा उसकी निशानी बताते हैं, उसकी निशानी है अपमान, बहुत जल्दी महसूस होगा। अभिमान है तो अपमान महसूस होगा, बहुत जल्दी फीलिंग में आ जाएंगे, किसी ने जरा से भी बात कही तो सहन नहीं होगी, गुस्सा करेंगे, बहुत जल्दी क्रोध करेंगे। जब अभिमान होता है तो गुस्सा भी जल्दी आता है, और वो जो अभिमान का अंश है उसमें हम अपने आप को हमेशा राइट समझते हैं, कोई भी बात मैंने कही यानी मैं ही राइट हूं। अगर ये मेरा भाव रहता है तो वो अंश है, नहीं दूसरा भी राइट हो सकता है, हम उसकी बात भी सुने, उनकी बात को भी सम्मान दें फिर अपनी बात रखें, या फिर अपनी गलती नहीं मानते हैं, अभिमान का अंश होगा तो अपनी गलती नहीं मानेंगे, गलती तो हम सबसे हो जाती है, नहीं मानेंगे और उसको सिद्ध करेंगे और जिद करेंगे। अगर हम किसी भी बात में बहुत ज्यादा सिद्ध करते हैं, बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं, आदत होती है ना, अगर मैं अपने को राइट समझ रही हूँ, गलत मैं अपनी मानती नहीं हूँ, तो फिर सिद्ध करेंगे, तो इसका मतलब वो अभी अभिमान का अंश है हमारे अंदर। फिर जिसके अंदर अभिमान होता है वो दूसरों की महिमा तारीफ को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप को ज्यादा अच्छा समझते हैं तो दूसरों की तारीफ सुनना नहीं अच्छा लगता, हाँ उनसे जल्दी ईर्ष्या हो जाएगी, फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे दूसरों को। अगर हम ज्यादा करेक्शन करते रहते हैं दूसरों की तो इसका मतलब भी वो सूक्ष्म अभिमान का अंश है, तो ये हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, चेक करके चेंज करना है। बाबा कहता है अहंकार को हमें स्वमान में परिवर्तन करना है। शुद्ध अहंकार क्या है? शुद्ध अहंकार है मैं आत्मा बाप समान विश्व कल्याणकारी हूं, है ना। बाबा जैसे विश्व सेवाधारी था, मैं आत्मा भी विश्व सेवाधारी हूं, या जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं उन स्वमान का अनुभव करना। अभिमान को स्वमान में परिवर्तन करना वो शुद्ध नशा है, एक है अशुद्ध अहंकार और ये स्वमान जो है वो शुद्ध नशा है। जैसे हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी थे, स्वयं भगवान का रथ। अभिमान हो सकता है ना कि इतना ऊंचा भगवान जो है उन्होंने मेरे तन का आधार लिया, लेकिन बाबा ने हमेशा अपने आप को विश्व सेवाधारी कहलाया और बच्चों को कहा आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूं। तो हमें भी बाबा के समान बनना है, सदा ही अपने आप को सेवाधारी निमित्त समझ करके चलना है, किसी भी बात में मैंपन नहीं हो। और यही बाबा कहता है जो ये सूक्ष्म मैंपन है, यहां तक कि कई बार बुद्धि का भी, ज्ञान का भी, जो हमारा ज्ञान है उसका भी सूक्ष्म अभिमान हमें हो सकता है, अपनी बुद्धि का भी हमें अभिमान हो सकता है, जब हम उसको समाप्त करते हैं, उसकी जब संपूर्ण आहुति होती है, तब आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करती। जैसे बाबा ने सर्वंश समर्पण किया, सब कुछ समर्पण किया, तो ये अंतिम समर्पण होता है सूक्ष्म मैंपन का, जो अभिमान है उसका समर्पण करना। हम अपनी दादियों को देखते रहे, बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, दादी जानकी को आज हम देखते हैं, कभी भी इतना बड़ा कारोबार दादियां संभालती रहे, लेकिन मैं करती हूँ ये शब्द कभी यूज नहीं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब बाबा करता है। दादी तो कभी शब्द ही यूज नहीं करती थी, मैं शब्द, दादी हमेशा कहती थी दादी कहती है, मैं कहती हूँ ये तो कहती ही नहीं थी दादी। तो मैं और मेरा पंचरा भी उनकी वाणी में भी नहीं देखा। तो हमें भी बाबा को, अपनी दादियों को फॉलो करना है। तो संपूर्ण निरहंकारी, इसलिए अहंकार को दो बार अंडरलाइन किया, निर्विकारी में भी आता है अहंकार, लेकिन अलग से भी बाबा ने बोला निरहंकारी बनो, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। और विशेष अगर हम अमृत वेले इस स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो फिर सारा दिन हमें स्वतः ही मदद मिलती है, बाबा की शक्तियां हमें मिलती रहती हैं और हम इस स्थिति का अनुभव करते हैं। तो हम बाप समान बने, ये बाबा की हम बच्चों से आशा है। तो हम जरूर इस बात पर अटेंशन देते हुए तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।